ओम शांति, ओम शांति। जैसा विषय है स्वमान, तो जब हम स्वमान शब्द कहते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ कहेंगे स्व का सम्मान। लौकिक भाषा में इसे आत्मसम्मान कहते हैं, पर वास्तव में वो आत्मसम्मान नहीं होता है। हम कहेंगे कि वो देह का संबंध का सम्मान, जिसको स्वाभिमान शब्द भी कहते हैं लौकिक भाषा में, तो उसमें कहीं ना कहीं अभिमान होता है, अंश होता है उसका। तो सम्मान को जोड़ते हैं पद पोजीशन से, किसकी पोस्ट कैसी है, किसके पास धन संपत्ति कितनी है स्टेटस के हिसाब से, या कोई शारीरिक स्थिति के अनुसार, शारीरिक बल वाले हैं या शारीरिक सौंदर्य है, कोई विशेष कलाएं हैं, कोई ऐसे गुण हैं उनके अंदर, तो उसके आधार पर उनको फिर सम्मान भी मिलता है, पर वो उसका कहीं ना कहीं अभिमान भी रखते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं वो निश्चित रूप से देह के संबंध के नहीं हैं, लेकिन आत्मा के संबंध के हैं। तो कौन कौन से स्वमान हमें मिले हैं वो तो लंबी लिस्ट है, जो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, क्योंकि तीनों कालों का बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। तो आप सभी बता सकते हैं, रोज हम अभ्यास करते हैं, तो कौन से स्वमान है, ये तो सभी को याद है अच्छी तरह से। मास्टर सर्वशक्तिमान है, और एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई देगा। कल्प कल की विजयी आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, अनुभव की खान हूँ, विष्णु चतुर्भुज हूँ, देवकुल की महान आत्मा हूँ, भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान, सिर्फ भाग्यवान नहीं लेकिन पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, और सदा विजयी, वो तो बताया आपने, कल्प कल्प की विजयी आत्मा, मास्टर ब्रह्मा हूँ, इष्ट देवी देवता हूँ। हाँ जी, जोर से बोलेंगे तो सुनाई दे। विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, आधार मूरत हूँ, बाबा के नैनों का नूर हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, बाबा के गले का हार हूँ, हाँ अवतरित आत्मा हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जितने भी टाइटल हैं जो बाबा ने बच्चों को दिए हैं, ऐसे टाइटल विश्व में किसी के नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता हो, अभिनेता हो या धर्म नेता हो, कितने भी बड़े वीआईपी हो। तो बाबा के बच्चे उस हिसाब से वीआईपी जो भी कहें, दुनिया में हु इज हु की लिस्ट होती है, इस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है उसकी बुक बनी हुई होती है। लेकिन बाबा की हु इज हु की लिस्ट में कौन है, हम बाबा के बच्चे। तो स्वयं भगवान के द्वारा जिनको स्वमान मिला है और सम्मान मिला है, हम वो आत्माएं हैं। दुनिया में किसी को भी डायरेक्ट भगवान से नहीं ये प्राप्ति हुई है, ये जितनी भी टाइटल्स हैं जो सम्मान बाबा हमें देते हैं, स्वयं परम धाम से आकर के हम बच्चों को याद प्यार देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, मालिकम सलाम, ऐसे ही कहेंगे, हम बालक सो मालिक हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति मार्ग में हम क्या समझते थे अपने आप को, मैं भगवान के चरणों की धूल हूँ, हम उसके दास और दासी हैं, चरणों के दास हैं, या गाते थे आरती में, मैं मूरख खल कामी, ऐसे ही कहते थे ना। लेकिन भगवान ने चरणों के दास और दासी से क्या बना दिया, क्या बना दिया, सिर का ताज बना दिया, अपने मस्तक की मणि बना दिया, इतना ऊंच स्थान। और जो माताओं बहनों को जो स्थान दिया, हाँ, वो तो हम जानते हैं कि भारत में तो क्या स्थिति की, पैरों की जूती बना दिया ऐसे कहेंगे, है ना। तो इतना श्रेष्ठ सम्मान क्योंकि स्वयं भगवान ने दिया है, तो अविनाशी सम्मान के अधिकारी बन गए। सिर्फ इस एक जन्म में, संगम युग में एक जन्म में हम स्वमान में रहते हैं और पूरे कल्प हम सम्मान प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा पूरे कल्प का सम्मान है। आप जब सतयुग त्रेता में होते हैं, राज्य अधिकारी होते हैं, तो प्रजा के द्वारा सम्मान मिलता है, और जब द्वापर युग में आते हैं तब भक्त बहुत सम्मान से पूजा करते हैं, क्योंकि पूज्य देवी देवताओं के रूप में आपकी पूजा होती है। तो आप देखते हैं ना देवी देवताओं के मंदिर में कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। यहां भी कोई कितने भी धर्म पिता होकर के गए हैं, या और भी राजनेताओं का भी गायन होता है, जो भी विश्व की महान आत्माएं हुई हैं, लेकिन जो विधि पूर्वक पूजन देवी देवताओं का होता है, उनके हर कर्म की पूजा, उनको उठाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, या जो भी उनका श्रृंगार करेंगे, उनको सुलाएंगे, जो भी पूजा करते हैं वो बहुत विधि पूर्वक करते हैं। तो ये विधि पूर्वक पूजा होना, और फिर तो शास्त्र भी जो बने हुए हैं, जो यादगार कथाएं बाबा कहते हैं संगम युग की ही हैं, शास्त्रों में जो भी कथाएं हैं वो किसके यादगार हैं, इस समय जो हमने कर्तव्य और चरित्र किए उसके यादगार उसमें नुंधे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी कितना विधि पूर्वक रखते हैं, रिवाजी किताबों की तरह शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उनको भी बहुत सम्मान पूर्वक उठाएंगे, पढ़ेंगे और फिर उस अनुसार रखेंगे। तो पूरे कल्प सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। अभी भी देखो ब्राह्मण हैं, तो आज भी जो नामधारी ब्राह्मण है, जो दुनिया के ब्राह्मण है, उनको बाबा नामधारी ब्राह्मण कहता है ना, कर्म से सच्चे ब्राह्मण तो हम बनते हैं। तो बाबा कहते हैं नामधारी ब्राह्मण भी कितने ऊंचे माने जाते हैं, उनको भी आज तक सम्मान मिलता है, भले अब उनकी वो धारणाएं नहीं रही, लेकिन फिर भी ब्राह्मण है तो सम्मान पाते हैं, और अपने ही नाम से ही जीवन निर्वाह कर लेते हैं, ब्राह्मण नाम से ही। तो इसीलिए वो पूरे कल्प की नोंद हो जाती है। तो बाबा ने जो हमें सम्मान दिए हैं, हम सिर्फ सुनकर खुश होते हैं या उसे स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, नहीं तो कई बार सोचते हैं कहाँ हम तो साधारण से हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, कहाँ बाबा इतनी ऊंची ऊंची बातें कहता है, हम कहाँ हैं ऐसे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार बाबा से मिली थी, तब हम कॉलेज में पढ़ते थे और उसी समय मैंने कोर्स किया था, और कोर्स के कुछ ही 5-6 महीने हुए होंगे, तो बहन जो है वो हमको बाबा मिलन के लिए लेकर के आई। तो बाबा उस समय एक एक से पर्सनल मिलते थे, ये अर्ली 80s की बात है, तो एक एक बाबा के सामने जाते थे और बाबा उनको वरदान देते थे और फिर टोली देते थे, दृष्टि देकर के अच्छे से अनुभव कराते थे। तो जब मेरी बारी आई और मैं बाबा के सामने थी, तो बाबा ने मेरे से पूछा कुमारी माना क्या, तो मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, तो मैं चुप खड़ी रही। तो बाबा ने कहा कुमारी माना 100 ब्राह्मण से उत्तम श्रेष्ठ, तो मेरे ऊपर से निकल गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे। क्योंकि मैं तो साइंस की स्टूडेंट थी और ये सब बातें हमने कभी जिंदगी में सुनी नहीं। फिर दूसरा कहा कि श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाली हो, सदा समर्थ हो, ऐसे ये 3-4 बातें बाबा ने कही। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बाबा ने ये सब क्या बोला है। और फिर जब मैं स्टेज से उतर के आई, तो मैंने बहन जी को बोला कि मुझे ये समझ नहीं आया। तो फिर बहन ने मुझे समझाया कि बाबा ने जो कहा है वो आपके तीनों कालों को देखकर कहा है, क्योंकि मैं तो अपना वर्तमान देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो बाबा ने कहा। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपके भविष्य को जानता है, और वो बात सही थी, क्योंकि उस समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, क्योंकि मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था और हम तो लौकिक दुनिया के हिसाब से सोचते थे कि हम डॉक्टरी पढ़ेंगे, फिर डॉक्टर बन करके हम क्या क्या करते हैं, उस तरह की सोच। ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी, जीवन की दिशा इतनी बदल जाएगी, ऐसा तो उस समय कुछ विचार ही नहीं था। तो मतलब कहने का भाव क्या है कि हम कई बार नहीं स्वीकार करते हैं जो बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्प या श्रेष्ठ सम्मान देते हैं, लेकिन क्योंकि बाबा हमारे तीनों कालों को जानते हैं। इस पर एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक बार एक राजा, सुनी भी होगी कईयों ने, कि एक बार एक राजा के छोटे बच्चे को शिशु अवस्था में ही भेड़िया उठाकर ले गया, तो ढूंढा उसको लेकिन नहीं मिला। फिर कुछ साल बीत गए, उसको 4-5 साल हो गए। अब वो जो बच्चा भेड़ियों के झुंड में चला गया था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो वो भेड़िए उसको ये नहीं समझ पाए कि ये इंसान का बच्चा है या भेड़िए का बच्चा है, तो उससे अपना ही बच्चा समझ करके वो पालन करने लगे। तो वो अब इंसान का बच्चा भेड़ियों में बड़ा हो रहा था, तो उसमें भेड़ियों जैसे ही लक्षण आने लगे, क्योंकि जो देखेगा वही सीखेगा, तो उसी तरह से चलने की कोशिश करना, उसी तरह से आवाज निकालना जैसे भेड़िए आवाज निकालते हैं, और फिर जब और थोड़ा बड़ा होने लगा तो वैसे ही उसके नाखून बड़े बड़े और शरीर पे बाल भी थोड़े आने लग गए। तो ऐसे 5 साल बीत गए और वो राजा शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, तो ये जो भेड़ियों का झुंड था ये उसके सामने आ गया। तो जो भेड़िए थे वो तो भाग गए, लेकिन जो इंसान का बच्चा भेड़िए के रूप में था वो इतनी तेजी से नहीं भाग पाया, वो पीछे रह गया। तो सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, और जब देखा तो देखा कि ये तो सचमुच भेड़िया नहीं है, इसकी तो शक्ल इंसान की है, तो इंसान का बच्चा कहीं ये भेड़ियों में है। तो उसको वो उठा करके राजमहल में ले आए, और फिर उसी उसको अच्छी तरह से नहला धुला करके जब साफ स्वच्छ किया, तो कोई राजकुमार की निशानी थी बचपन में, तो वो निशानी थी उसको, और उससे पता चला कि ये वही राजकुमार है जो बचपन में गुम हो गया था। लेकिन अब तो ये राजकुमार रहा नहीं, अब ये भेड़िया बन चुका है, अभी तो इंसान भी नहीं है ऐसा कहेंगे, ना तो उसे इंसान की भाषा आती है, ना इंसान जैसी उसकी चाल चलन है। तो फिर राजा ने घोषणा कराई कि जो भी इस बच्चे को इंसान के रूप में शिक्षित कर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। राजाओं का ही तरीका होता है, लेकिन बहुत लोगों ने सोचा पर हिम्मत नहीं की। उन्होंने सोचा अगर हम नहीं बना सके तो कहीं राजा सजा ना दे दे। पर एक ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत रखी और उसने उसको सिखाना शुरू किया, लेकिन बहुत मेहनत लग रही थी और उसको कुछ सिखा नहीं पा रहा था। वो काफी समय हो गया, काफी महीने बीत गए, क्योंकि वो जो छोटेपन की बुद्धि होती है उस समय वो जो ग्रेस्पिंग पावर होती है, बच्चा जो सीखता है, तो थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि फिर भी थी तो इंसान की बुद्धि, तो धीरे धीरे वो सीखने लगा। और 1 साल लग गया उसको ये सिखाने में कि मनुष्य कैसे बोलते हैं, और फिर उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी रखा गया कि वो जो 4 पांव से चलना, तो उसका पूरा शरीर उसी तरह से मुड़ चुका था, उसी तरह से ढलने लगा था शरीर, तो उसको पूरा सीधी शेप में लाना कि वो सीधा खड़ा हो, तो उसके लिए फिर जो एक्सरसाइज करने वाले डॉक्टर हैं वो रखे गए। तो काफी साल लग गए, माना करीब उतने ही साल जो 4-5 साल उसको भेड़िया बनकर हो गए थे, ऐसे ही 4-5 साल लग गए उसको एक इंसान के रूप में सीधा खड़ा करके और वो भाषा मनुष्य की सिखाने में। तो राजा खुश तो हुआ, क्योंकि उसने बोला लेकिन ये तो साधारण इंसान नहीं है, ये तो राजकुमार है, तो इसको अब ये सिखाना है कि एक राजकुमार का जीवन कैसे होता है, एक राजा का बेटा कैसे होता है ना, उसका चरित्र कैसा होता है, ये इसको सिखाना है। और फिर वो सिखाने में तो उसको और काफी साल लगे। तो अब यहां पर ऐसे नहीं था कि वो इंसान नहीं था, लेकिन क्योंकि वो भटक गया, अपने उस जीवन से अलग हो गया और जिसके संग में चला गया वैसा ही वो बन गया, तो उसको वापस इंसान बनाने में कितनी मेहनत लगी। और ऐसा नहीं था कि वो राजकुमार नहीं था, जन्म से तो राजकुमार ही था ना, लेकिन क्योंकि वो भूल गया कि मैं राजकुमार हूं, तो उसको उस राजकुमार की स्थिति में लाने में भी फिर कितनी मेहनत लगी। तो यहां वही बात हमारे साथ लागू होती है कि ऐसे नहीं कि हम आत्मा नहीं हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन जब माया के रावण के चंगुल में आ गए, उनके वश हो गए, तो हम पूरी तरह से भूल गए कि हम आत्मा हैं, हम देह समझने लगे अपने आप को। और जब बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा हूं, और सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं, यानी वो जो राजकुमार वाली बात कि हम कोई साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उस स्मृति में आने में हमें कितनी मेहनत लगती है। लगती मेहनत रोज मुरली में बाबा कहता है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब बाबा ये ना कहता हो कि देही अभिमानी बनो, और रोज हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, बार बार हमें देह अभिमान आता है, क्योंकि वो 63 जन्मों के जो संस्कार हैं वो इतने पक्के हो चुके हैं अभी कि उस स्मृति में लाने में बाबा को हमें समय लगता है। तो ये जो स्वमान का अभ्यास है, जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना ही हमें नशा और खुशी होगी। केवल सुनकर खुश होने वाली बात नहीं, लेकिन वो हमारी स्मृति में रहे, निरंतर स्मृति में रहे, और तब समर्थि आएगी, यानी उसका जो अनुभव होगा कि मेरी वो स्थिति है। जैसे हनुमान के बारे में कहते हैं कि हनुमान जो थे वो उनको कहा कि सीता के लिए आपको लंका में जाना है तो समुद्र लांघना होगा, तो कई वानर थे वहां पर, तो सभी ने अपनी अपनी मुश्किल बताई कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान को वो लायक समझ रहे थे कि हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं। पर हनुमान ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं भी तो आप लोगों के जैसा ही हूं, मैं भी ये समुद्र लांघ कर उधर नहीं जा सकता। तो जो जामवंत थे उनको पता था कि ये पवन पुत्र है और ये हवा में उड़ सकता है और उड़ करके ये पहुंच सकता है, लेकिन क्योंकि उसको खुद को विस्मृति थी कि मेरे अंदर ये पावर है, और जब उन्होंने उनको उनकी पावर की स्मृति दिलाई तो फिर वो कार्य उन्होंने कर लिया। और ऐसे ही एक कहानी आती है कि एक बार एक राजा को अपने महल के सामने एक शिला थी, उसको तुड़वाना था, तो वही उसने उस जो है उसका वो करवाया कि जो इसको तोड़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो काफी लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाए क्योंकि वो शिला बहुत मजबूत थी। पर एक पतला दुबला एक युवक आया, वो राजपूत था, तो उसने एक शर्त रखी कि मैं तोड़ सकता हूं लेकिन मेरा एक जो दोस्त है वो मेरे कान में कुछ कहेगा, तो आपको उसके लिए मुझे अनुमति देनी होगी कि वो मेरे कान में कुछ कहे, तभी मैं हथौड़ा चलाऊंगा या जो भी हथियार उसे प्रयोग करना है उसे तोड़ने के लिए तब चलाएगा। तो वो उसके कान में उसको बार बार ये कहता था कि तुम राजपूत हो और राजपूत कभी हार नहीं मानते, राजपूत सदा विजयी होते हैं, या तो वो अपनी जान दे देते हैं, मतलब कभी भी मैदान छोड़कर के राजपूत नहीं जाते हैं। और ऐसा ही हुआ कि भले वो देखने में दुबला पतला था लेकिन 2-4 बार उसने वो चलाया और उसको तोड़ दिया, तो वो स्मृति से समर्थी आ गई। तो यहां भी बाबा हमें जो स्मृतियां दिलाते हैं वो स्मृतियों से हम पुनः अपनी उस स्थिति को, जो हमारी संपूर्ण स्थिति है, देव स्थिति है, जो हमारी परम धाम की अनादि स्थिति है, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो स्वमान है उसका संबंध सीधा सम्मान से, जितना हम स्वमान में रहते हैं उतना हमें स्वतः ही सम्मान मिलता है। सम्मान मांगने की चीज नहीं है कि हम किसी को कहें कि आप मुझे सम्मान दे दो और वो मुझे सम्मान दे, ऐसा होता है कभी? जितना हम योग्य होते हैं उसके काबिल होते हैं हमें अपने आप वो सम्मान मिलता है। तो बाबा को हमने देखा जो ब्रह्मा बाबा थे, या हमने दादियों को देखा दादियों के जीवन में, उन्होंने सदा ही सबको सम्मान दिया। शिव बाबा भी जो हैं सभी आत्माओं को सम्मान देते हैं, स्वतः ही देते हैं, और हमें पता है कि भगवान फिर कितना सम्मान के अधिकारी हैं। तो ब्रह्मा बाबा के लिए बच्चों के साथ जब उनका व्यवहार होता था तो कहते थे बच्चों से भी वो सम्मान युक्त स्नेह का व्यवहार करते थे। छोटों को हम स्नेह देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन बाबा सम्मान युक्त स्नेह देते थे और हमेशा उनको इस नजर से देखते थे कि ये होवनहार विश्व कल्याणकारी हैं। जो दादियां हॉस्टल में पढ़ी उस समय जो बाबा ने बोर्डिंग बनाया था, तब हम सुनते हैं कि कैसे बच्चों की पालना की बाबा ने। जो गुलजार दादी खास अनुभव सुनाती हैं कि बाबा जब हमें ऐसा कहते थे तो हम सोचते थे कि विश्व का नक्शा क्या है वही हमें नहीं पता, और बाबा हमें कहते हैं विश्व कल्याणकारी, क्योंकि वो कोई स्कूल में तो पढ़ने गए नहीं। और फिर दादी कहती हैं कि आज हम उस बात को समझ पाते हैं कि बाबा ने जो हमारे में आस रखी वो कैसे पूरी हुई, कि हम एक बार नहीं कितनी बार इस दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं। हमारी दादियां तो कितनी बार इस पूरे विश्व की सेवा कर चुकी हैं, पूरे विश्व के ही पांचों महाद्वीपों में जाकर के उन्होंने बाबा के बच्चों को संदेश दिया है, बाबा का बनाया है। ऐसे ही युवाओं को बाबा जब मिलते थे, चाहे वो कुमार थे कुमारियां थे, बाबा की नजर होती थी कि ये वो बच्चे हैं जो असंभव को संभव करने वाले हैं। यानी जिसको दुनिया असंभव समझती है वो ये संभव करने वाले, ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाली आत्माएं हैं। ऐसे ही जब वो बुजुर्ग से मिलते थे तो उनको समझते थे ये मेरे ही समान अनुभवी हैं, मेरे हमजींस हैं। जब कोई बंधन वालों को मिलते थे, बांधेले या बांधेलियां जिसे कहेंगे, तो बाबा की नजर होती थी कि ये याद में नंबर वन आत्माएं हैं, ये बहुत ही बाबा के प्यार में लीन रहते हैं, लगन में मगन रहने वाली आत्माएं हैं, और उस अनुसार ये ऊंच पद पाएंगे। तो भगवान ने इतनी श्रेष्ठ नजर से जो सबको देखा, बाबा ने खास ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम कहेंगे कि बाबा ने जो देखा, तो बाबा हमेशा कहता है कि उसी दृष्टि की सृष्टि में रहो, जो बाबा की ऊंच दृष्टि हमारे प्रति रही वैसा ही हम अपने आप को भाग्यवान समझें। तो बाबा ने सबको सम्मान दिया, इसीलिए वो नंबर वन बने, चाहे वो पूज्य सम्मान यानी भक्ति में भी शिव बाबा के बाद सबसे अधिक पूजा किसकी होती है, कृष्ण की पूजा होती है। भारत में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है। तो नेक्स्ट टू गॉड कौन रहे, वही रहे। और राज्य सम्मान में भी नंबर वन यानी श्री लक्ष्मी नारायण, पहली गद्दी किसको मिली, बाबा को ही मिली। तो फिर हमें भी फॉलो फादर करना है। फिर स्वमान है तो अभिमान नहीं होगा, जितना स्वमान उतना निर्माण। वो भी हमने दादियों को देखा, बाबा को तो नहीं देखा लेकिन दादियों को हम देखते थे, खास बड़ी दादी जी दादी प्रकाशमणि जी जो थे, मैं देखती थी कि दादी मुरली क्लास करा के आते थे और आंगन में बैठे होते थे, लगता ही नहीं था कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की हेड बैठी हैं, बिल्कुल माँ की तरह उनका रूप होता था। और कोई भी आकर के दादी से मिल सकता था, कोई भी किसको कुछ पूछना हो, कोई अपॉइंटमेंट की बात नहीं। मैं समझती हूँ जो पुराने भाई बहने हैं आप में, जो दादी के समय आए हैं ज्ञान में, दादी की पालना ली है, उन लोगों को ये अनुभव होगा। हैं कोई बैठे हैं यहाँ पर, कुछ कुछ हैं। तो हमने कभी देखा नहीं कि वो कोई अथॉरिटी का रूप दिखाई दे दादी का, कि मैं कोई हेड हूं और उस तरह से कंट्रोल करना सबको। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या कोई अथॉरिटी वाले होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहम होता ही है। ब्रह्मा बाबा ने ही अपने आप को क्या कहा, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, सेवाधारी हूं, कभी भी भगवान का मैं रथ हूं, अभिमान हो सकता है ना, भगवान ने मुझे अपना रथ बनाया है, चुना है, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, लेकिन अंश मात्र भी मैंपन नहीं रहा, बाबा के अंदर भी नहीं और दादियों के अंदर भी हमने कभी नहीं देखा। दादी तो मैं शब्द प्रयोग ही नहीं करती थी, हम सुनते हैं कि दादी तो कहती भी कोई बात तो दादी ऐसा कहती है, मैं कहती हूँ ऐसा तो दादी कहते ही नहीं थे। तो जितना स्वमान उतना ही निर्माण, और जितना हम निर्माण होते हैं उतना ही हम विश्व परिवर्तन का कार्य या उतना ही हम विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। सेवाधारी जो स्वरूप है वो तभी हो सकता है, लेकिन अभिमान का अंश, उसकी निशानियां क्या हैं? बाबा हमेशा कहते हैं कि जहां अभिमान होगा वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है, निशानी है उसकी। तो अगर कोई भी बात में मुझे फीलिंग आ जाती है, किसी ने मुझे कुछ कहा, कोई छोटी सी बात कह दी और वो छोटी सी बात भी मुझे चुभ गई, अगर मुझे उसकी फीलिंग आ गई, इसका मतलब मेरे अंदर वो अभिमान का अंश है। जो अभिमान वाले होते हैं उनको अपनी हर बात राइट लगती है, मैं राइट हूं, और इसीलिए वो दूसरे की बात को हमेशा काटेंगे, उनकी बात को वो स्वीकार नहीं करेंगे, अपने विचार को वो अधिक महत्व देंगे। यानी हम चेक कर सकते हैं कि कहां तक हम स्वमान में हैं और कहां तक अभी तक हमारे अंदर वो देह अभिमान का अंश है। तो दूसरे की राय को सम्मान नहीं देना। बाबा हमेशा कहता है कि हरेक का अपना अपना विचार हो सकता है, क्योंकि हरेक अपने नजरिए से राइट होता है। मैं किसी बात में अपने नजरिए से राइट हूं तो दूसरा अपने नजरिए से राइट है, तो फिर भले मुझे उसका विचार पसंद नहीं आ रहा, यानी मेरे अनुसार वो ठीक नहीं है, तो भले हम ना माने लेकिन उनकी बात को हम काटे भी नहीं कि हाँ ठीक है आप अपनी रीति से सही हैं, लेकिन बाबा के श्रीमत के अनुसार, मानो अगर वो बाबा के श्रीमत के अनुसार नहीं है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बाबा के श्रीमत के अनुसार ऐसा होना चाहिए या इस तरह से करना चाहिए। तो दूसरों के विचारों को भी सम्मान देना ना, ये स्वमान है। फिर जो अभिमान के अंश वाला होगा वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है। हमसे गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, एक होता है कि गलती मानी और अगर सॉरी करने जैसी बात है तो उसी समय हमने सॉरी कर दिया या माफी मांग ली, बात वहीं खत्म हो गई, बात बढ़ती नहीं है। पर जिनको अभिमान का अंश होता है ना, वो उसमें उस अपने को वो समझते हैं कि हमें इससे कम समझ लिया जाएगा, हमारी कमजोरी अगर सामने आ गई तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि अपनी श्रेष्ठता को वो कम नहीं होने देना चाहते, तो फिर उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। कई बार उसके कारण फिर झूठ भी बोलने की जरूरत पड़े तो झूठ भी बोलते हैं, और फिर बात जो छोटी सी होती है वो कई बार बहुत बढ़ जाती है। तो अगर कहां भी हमारा ऐसा स्वभाव है तो हम चेक कर सकते हैं अपने अंदर कि अभी भी वो अंश हमारे अंदर है। फिर जिसके अंदर अभिमान होगा वो दूसरों की तारीफ नहीं सुन पाता है। तारीफ नहीं सुन पाता माना, होता ही हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, तो कोई किसी की विशेषता से थोड़ा प्रभावित होते हैं तो वो उनकी प्रशंसा करते हैं कि देखो ये इनके कितने अच्छे गुण हैं, तो वो तुरंत उनकी बात काटेगा और कहेगा आपको पता नहीं ये कैसे हैं। तो मैं हम बताते हैं आपको ये कैसे हैं। तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो उतनी उदारता हमारे अंदर नहीं है। बाबा के तो सभी बच्चों में कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई गुण है ही, तो हमें उनके गुणों को ही देखना है, गुण ग्राही ही बनना है, ये हमारा ज्ञान हमें सिखाता है ना। लेकिन उनकी अवगुण दृष्टि ज्यादा होगी कि दूसरों की कमियां हम कैसे निकालें, है ना, जैसे कहते हैं ना उंगली हमेशा दूसरों की ओर, तो मैं अच्छा और दूसरे में तो ऐसा है और ऐसा है, दूसरों की शिकायत करना, तो ये सब अंश वाले में होगा, रौब होता है उनके अंदर, कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो रौब रखना ही चाहिए, फिर वो उसको अपना अधिकार समझते हैं। जैसे कि अगर हम अपना रौब नहीं रखेंगे तो लोग हमें समझेंगे कैसे, क्या कहेंगे। बाबा हमेशा भाइयों के लिए कहते हैं कि भाइयों में थोड़ा रौब का अंश होता ही है, तो रौब रखना है या रुहाव रखना है, क्या कहेंगे। रुहाव रखना है, रुहाव माना वही जो रूहानी शान है हमारी, जिसको हमने सोमान कहा, इसको बाबा कहता है नारायणी नशा, जो शुद्ध नशा है वो शुद्ध नशा हमें रहे, लेकिन वो रौब का रूप तो फिर देह अभिमान का रूप हो जाता है, तो उसका प्रभाव अपने आप पड़ता है। जैसे ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी थी, बाबा कहते हैं लाखों के बीच में भी बाबा खड़ा होगा तो पता चलता था, माना उतना उनका चुंबकीय व्यक्तित्व था बाबा का कि दूर से ही समझ में आता था। तो हमारा व्यक्तित्व इस तरह का हो कि हमें कोई रौब की आवश्यकता ही ना पड़े। फिर जो भी हमारे स्वमान हैं, जिनको हम बार बार स्मृति में लाएंगे, जिसको बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चले, है ना, जब तक दूसरे भी नशे होते हैं ना उनको घोटा नहीं जाता है तो उतना वो नशे नहीं चढ़ते, माना उतना नशे वाली वो नहीं बनती है। तो ऐसे ही जो नारायणी नशा भी है वो भी तब रहता है जब उसको बार 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 स्मृति में लाएं। तो क्या विधियां हैं जो हमारा स्वमान हमें निरंतर स्मृति में रहे, क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, हाँ कई तरह के विघ्न हमारे जीवन में आते हैं। क्यों कम हो जाते हैं हमारे स्वमान, क्योंकि कई तरह के जो भी विघ्न आते हैं, अब चाहे हमारे तन के संबंध के हों, कोई बीमारी आ जाती है, या धन कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, यानी जॉब के संबंध से हो या बिजनेस के संबंध से हो या बच्चों के संबंध की हो, कई बातें जो होती हैं, तो जो भी कोई विघ्न आते हैं उन विघ्नों में व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाना है हमें, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है विघ्न तो आने ही हैं, क्योंकि अगर विघ्न नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमने ये पढ़ाई पढ़ी है और उसको हम पास कर सकते हैं, है ना। तो पेपर हैं, उन्हें हमें पास करना ही है। दो तीन बातें बाबा ने हमें समझाई हुई हैं कि ये पेपर आएंगे और उसके अनुसार जो ज्ञान हमें यूज करना है, यानी अपनी सीट पर हमें सेट रहना, ये स्वमान की स्वस्थिति की सीट बाबा ने हमें दी है। तो जैसे उस दुनिया में भी कोई अपनी सीट पर होते हैं तो सब उनके ऑर्डर पर होते हैं, लेकिन जब वो सीट से उतर जाते हैं तो फिर उनको हो सकता है ना भी माने, सीट पर नहीं, आज प्रधानमंत्री की सीट पर नहीं होंगे तो नेचुरली वो देश के लिए कोई कानून नहीं बना सकते, कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकते, जब सीट पर हैं तभी उनका ऑर्डर चलता है। तो यहां भी हमारी अगर स्वस्थिति की सीट है, स्वमान की सीट पर हम हैं, चाहे वो जो हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, या मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, जो भी उससे संबंधित हमारे स्वमान है, जो भी विघ्न आ रहा है उसको जब हम यूज करते हैं तो सहज ही हम उस विघ्न से पार हो जाते हैं। जो भी हमारी शक्ति है वो प्रयोग में आती है, चाहे वो सहन करने की शक्ति है, चाहे वो सामना करने की शक्ति है, चाहे वो समेटने की शक्ति है, चाहे वो निर्णय करने की शक्ति, उस समय हमें कोई ना कोई शक्ति की जरूरत होती है और वो शक्ति तब कार्य करती है, ऑर्डर मानती है। ऐसे कहने का मतलब है, बाबा कई बार कहते भी हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर के आप अपनी शक्तियों को ऑर्डर करो और वो ना माने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सम्मान की सीट पर सेट रहना है। फिर हम अमृत वेले जो अभ्यास करते हैं, अमृत वेले रोज हम अपने आप को ये पक्का संकल्प दें कि मैं कौन हूं। अमृत वेले हम जो योग करते हैं, कई बार वो साइलेंस का योग ज्यादा करते हैं, साइलेंस का योग करेंगे आत्मा समझ के, बाबा को याद किया, परमधाम में मन को स्थित किया और धीरे धीरे कौन सी साइलेंस में चले जाते हैं, नींद की साइलेंस में चले जाते हैं। लेकिन जब स्वमान इतने स्वमान है, आप याद करो मैं कौन हूं, मतलब सिर्फ आत्मा हो नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हो। और जब वो स्वमान की माला का सिमरण हम करेंगे तो आप समझ सकते हो कितनी खुशी होगी, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो जो खुशी और नशा होगा वो आपकी नींद को अपने आप ही उड़ा देगा। और फिर सारे दिन के लिए उसमें से एक चुन लो, पूरे स्वमान को स्मरण करना और फिर सारे दिन के लिए मुझे आज पूरा दिन इस स्वमान का अनुभव करना है। जैसे मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, तो समझ लो मैंने वो स्वमान दिया सारे दिन के लिए, या मैंने ले लिया विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, जो भी आपको लगता है कि आज मुझे ये अनुभव करना है बाबा से। फिर उसका थोड़ा सा चिंतन भी कि दिल तख्त नशीन अगर मैं आत्मा हूं तो उस आत्मा की निशानियां क्या हैं, कौन दिल तख्त नशीन हो सकते हैं बाबा के, उसके लक्षण भी तो होंगे ना, सभी तो दिल तख्त नशीन नहीं होते बाबा के बच्चे, तो दिल तख्त नशीन कौन होंगे कौन होंगे, जो आज्ञाकारी होंगे। माँ बाप के दिल पर कौन चढ़ते हैं, आज्ञाकारी होंगे, यानी बाबा की श्रीमत प्रमाण चलने वाले। फिर दूसरा बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, भगवान को सच्चाई सफाई पसंद है, यानी जो बाबा से सच्चे हैं। तो मेरा दिल अंदर बाहर साफ है तो सारा दिन मुझे अटेंशन रखना है ना, और केवल बाबा से नहीं लेकिन जब हम आपस में भी व्यवहार में आ रहे हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, तो भी हमारा मन अंदर बाहर सबके प्रति स्वच्छ रहे। तो होली हंस वाली जो स्थिति है उस स्थिति को हम अनुभव करें। जैसे आज की मुरली में बाबा ने क्या सम्मान दिया, इस रोज मुरली में भी हमें सम्मान मिलते हैं। तो होली से मुझे याद आया कि आज की मुरली में क्या सम्मान था, नहीं आज की मुरली में पहली लाइन ही थी हम होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे हैं। तो कितना ऊंचा सम्मान है होलीएस्ट ऑफ होली, दुनिया में हिज होलीनेस और हिज हाईनेस ऐसे कहते हैं लेकिन वो वास्तव में तो होली होते नहीं है। तो हम तो मन वचन कर्म तीनों ही तीनों में ही बाबा हमें होली बनाते हैं। तो इस तरह से जो भी सम्मान हम लें उस सम्मान को हम उसके उसके मनन करते हुए फिर उसका सारा दिन अनुभव करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव बाबा कराता है। हम भी कई बार ऐसे प्रयोग करते हैं कि समय प्रति समय जब लगता है कि हाँ आज सारे दिन कोई विशेष स्थिति का हमें अनुभव करना है बाबा से, तो हम देखते हैं कि सचमुच वैसा ही अनुभव बाबा फिर हमें कराते भी हैं। और कई बार फिर बड़ा वंडरफुल लगता है कि अच्छा ऐसा भी अनुभव हो सकता है, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। और स्वमान वाला जो है वो कोई भी हो, मतलब ऐसे नहीं कि कोई कंडीशन है कि इसको हम सम्मान देंगे। जैसे कुछ तो सम्मान के अधिकारी होते ही हैं, मानो जैसे हम पद पोजीशन की बात करते हैं या कुछ के अंदर कुछ ऐसी गुण कलाएं हैं जो हमसे वरिष्ठ हैं, समझो किसी भी क्षेत्र में हम जो हमारे आदरणीय, जैसे हम कहेंगे परिवार में भी होते हैं, मात पिता हैं या जो भी, तो हम उनको सहज ही आदर करते ही हैं, सम्मान देते ही हैं, लेकिन सभी को नहीं। लेकिन जो सम्मान वाले हैं वो सभी को, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा का देखा, चाहे वो ज्ञानी हैं चाहे वो अज्ञानी हैं, चाहे वो गुणवान हैं और चाहे उनके अंदर अवगुण भी हैं। अब सभी आत्माओं में सभी प्रकार सभी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हैं तो वो भी हो सकता है। कोई ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने ऐसे कर्म कर दिए जो हमारी नजरों में गिर गए, है ना, हो सकता है विकारों के वश होकर के इंसान कई बार ऐसे कर्म कर जाते हैं और हमें मालूम है वो। तो जो स्वमान वाली आत्मा है वो कभी भी ऐसी आत्मा को और गिराने की कोशिश नहीं करेगी कि इसने तो ऐसे कर्म किए ना, इसको तो ऐसा मिलना ही चाहिए। तो तो ये तो अपने किए का फल भोग रहे हैं। कई बार ऐसे ऐसे संकल्प आ सकते हैं, लेकिन ये संकल्प देह अभिमान वाले के हैं। जो समान वाले हैं वो हमेशा ही आत्मा को सहयोग देकर ऊंचा उठाएंगे उसे फिर से, कि वो अपनी पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले या पुनः जो है बाबा की तरफ वो आए, बाबा के ज्ञान को मतलब धारण कर पाए, इस तरह से उनको सहयोग देंगे। तो ये हम अपने आप में चेक करें कि बाबा जो हमें श्रेष्ठ स्थिति देते हैं या जो भी श्रेष्ठ सीट, मन की सीट है ये ना, जो मन की सीट बाबा ने हमें दी है, हम अपने आप को उस सीट पर सेट रखते हैं, तो फिर हमें किसी आत्मा से सम्मान लेने की जरूरत है ही नहीं। हमें भगवान से जो मिल रहा है, मतलब इस संगम युग पर तो सिर्फ हमें बाबा से ही लेने की इच्छा रखनी है, क्योंकि वो देने वाला दाता है, और अन्य सभी आत्माओं को हमें सिर्फ देना है। आत्माओं से इच्छा मात्रम अविद्या हम कहेंगे, कि कोई भी आत्माओं से हमें सम्मान लेने की इच्छा नहीं रखनी है, सिर्फ मुझे देना ही है। कई आत्माओं के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हम इतना करते हैं या जो भी हमारी ये पोजीशन है, हमारे अंदर ये विशेषता है, फिर भी हमें पूछा नहीं जाता, फिर भी हमें सम्मान नहीं देते, फिर भी हमें स्नेह नहीं देते। तो बाबा ने कहा आत्माओं से ये इच्छा कभी नहीं रखनी। अगर आपने इच्छा रखी आत्माओं से, तो फिर आप सम्मान में न तो रह सकेंगे और ना ही उनको सम्मान भी दे सकेंगे। ठीक है, कि हमें सम्मान की निरंतर स्मृति में रहना है। कोई ना कोई सम्मान जो बाबा ने हमें दिए हैं, उस सम्मान की पोजीशन में हम रहें, तो सोते ही सबको भी हम सम्मान देंगे। ओम शांति।
नूर से है उजियारा। मुस्कान आपकी बाबा।